माधवो कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बन चली। यमुना तीरा बन चली। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बन चली। यमुना तीर बन चली। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्री श्रीमदिष्टवाइन गिरीश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रोसेस कॉन्फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री कौंडताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 24 मेरे पीछे बोलिए। अच्छेद्योयम् मदायोयम् अक्लेद्योऽसौस्य एव च नित्यः सर्वे गतः स्थाणु अचलोयम् सनातनः अच्छेद्योयम् मदायोयम् अक्लेद्योऽसौस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयम् सनातनः अच्छेद्योऽयम् मदायोऽयम् अक्लेद्योऽसौस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयम् सनातनः। शब्दार्थ बोलिए। अच्छेद्य ना टूटने वाला अयम यह आत्मा अदाह्य ना जलाया जा सकने वाला अयम यह आत्मा अक्लेद्य अघुलनशील अशोष्य ना सुखाया जा सकने वाला एवं निश्चय ही च तथा नित्यः शाश्वत सर्वगतः सर्वव्यापी स्थाणुः अपरिवर्तनीय अविकारी अचलः जड़ अयम यह आत्मा सनातनः सदैव एक सा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुनवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो अशोष्य ए विचार। श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान चार प्रकार की विशेषताएं बता रहे हैं जीवात्मा की। चार विशेषताएं, पहली क्या है अच्छेद्योयम, इसको छेदा नहीं जा सकता या काटा नहीं जा सकता, तो जीवात्मा को काटा नहीं जा सकता है, है? और दूसरा अदाह्योयम, इसको जलाया नहीं जा सकता है, और तीसरा अक्लेद्योयम, इसको जल में गलाया नहीं जा सकता है, अशोष्य इसको सुखाया नहीं जा सकता है। तो श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान ने जो चार विशेषताएं बतलाई हैं, तो ये पिछले श्लोक से संबंधित है। पिछले श्लोक में, पूरे श्लोक में भगवान ने चार बातें बताई थी, उनको भगवान ने संक्षेप में इस श्लोक की पहली पंक्ति में बता दिया है ना। क्यों? गीता का विषय बहुत सरल है, भगवान बहुत सरल ढंग से समझा रहे हैं, इसलिए देखिए भगवान की समझाने की विधि। पिछले श्लोक में जो ना जो चार बातें भगवान ने बतलाई हैं, तो उनको दोहराया भगवान ने इस श्लोक की पहली पंक्ति में, मतलब आधे श्लोक में उसी को दोहराया है ना। जो पहली बात पिछले श्लोक में भगवान ने कही थी, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, शस्त्र को छेदते नहीं, छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा अच्छेद्योयम, क्योंकि ये अच्छेद काटा नहीं जा सकता है। फिर दूसरी बात भगवान ने बताई थी, नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकता है। तो दूसरे इस श्लोक के दूसरे जो शब्द हैं भगवान के, अदाह्योयम, क्योंकि जलाया नहीं जा सकता। फिर तीसरी बात पिछले श्लोक में भगवान ने बताई थी, न चैनम क्लेदियंती आपो, कि जल इसको गला नहीं सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं अक्लेद्योयम, ये गलाया नहीं जा सकता है। फिर चौथी बात भगवान ने बताई थी, न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं अशोष्य ये विचार, ये सुखाया नहीं जा सकता है ना। तो उन्हीं को भगवान दोहरा रहे हैं। अब ये समझना चाहिए कि इसको जो है शस्त्र छेदन नहीं कर सकते हैं, छेदन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा पृथ्वी तत्व का बना नहीं है। आप समझे, जो चीज पृथ्वी तत्व की बनी होती है ना, ठोस आकार की, उसी को तो काटा जा सकता है कि नहीं। ये जो जीवात्मा है ये पृथ्वी तत्व का बना हुआ नहीं है, है ना। जैसे कि पानी को थोड़ी आप काट सकते हैं, हवा को नहीं काट सकते हैं, अग्नि को नहीं काट सकते हैं, आकाश को नहीं काट सकते हैं। क्यों काटा जाता है? किसको? पृथ्वी तत्व को ही काटा जा सकता है ना। तो जीवात्मा को भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी तत्व से बना हुआ नहीं है ये। जिस चीज में पृथ्वी तत्व होता है उसी को काटा जा सकता है ना। फिर दूसरी बात भगवान ने कहा है कि नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकता है। तो आग किस चीज को जलाता है? जिसमें अग्नि तत्व होता है। जैसे लकड़ी में आग छिपी है, इसलिए लकड़ी से आग निकलती है और लकड़ी आग पकड़ती है ना। तो जो चीज अग्नि तत्व से बनी है उसको ही जलाया जा सकता है। तो ये जीवात्मा अग्नि तत्व का बना हुआ नहीं है। न चैनम क्लेदियन व्याप, पानी इसको गला नहीं सकता है, है ना। तो पानी किस चीज को गलाता है? जो जल तत्व से बना हुआ है उसी को ही पानी गलाता है, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जल तत्व का बना हुआ नहीं है। न शोषयति मारुतः, और हवा इसको सुखा नहीं सकता है। हवा किस चीज को सुखाती है? जो वायु तत्व से बनी हुई चीजें हैं उसी को हवा सुखाती है, है ना। तो जीवात्मा वायु तत्व का बना हुआ नहीं है। तो ये चार बातें भगवान ने बतलाई हैं इस श्लोक की पहली पंक्ति में। अब भगवान इसकी और विशेषताएं बतलाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान पांच विशेषताएं और बतलाते हैं, है? एक तो है नित्य, दूसरा सर्वगत, तीसरा स्थाणु, चौथा अचल और पांचवा सनातन, है ना। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो इस श्लोक में भगवान ने 9 विशेषताएं बतलाई हैं। एक श्लोक में जीवात्मा की 9 विशेषताएं भगवान ने बतलाई हैं। तो प्रभुपाद जी क्या करे, इतनी ज्यादा विशेषताएं अगर हैं इसका मतलब क्या है कि ये भगवान का अंश है जीवात्मा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। हाँ, अद्वैतवाद का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है। मतलब अद्वैतवाद का समर्थन नहीं हो सकता इस श्लोक में। अद्वैतवाद का मतलब क्या है कौन बताएगा? शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद ये क्या है कि ये जीव, हम जो जीव आत्मा है, अगर अज्ञान से मुक्त हो जाएं तो फिर क्या हो जाएंगे? हम भगवान में एक हो जाएंगे, हम ही भगवान हैं। एक भगवान जो है, एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों में देख रहा है अज्ञान के कारण, माया के कारण। तो ये बहुत गलत सिद्धांत है, लेकिन शंकराचार्य ने स्थापित किया इस सिद्धांत को, है? और लोग भ्रमित होते हैं, लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया सिद्धांत है, लेकिन वो गलत सिद्धांत है। आप समझे, अद्वैतवाद ये गलत सिद्धांत है। और क्या होता है, समझे? तो मुक्ति के बाद हम जो जीवात्मा है भगवान में मिल जाएगा, भगवान के साथ एक हो जाएगा, ये अद्वैतवाद है, है ना। तो ये बहुत फैला हुआ है, हो सकता है कि आपके भी अंदर घुस जाए। अगर आप ध्यान नहीं दोगे और संभल के नहीं रहोगे तो ये सिद्धांत आपके भी दिमाग में घुस सकता है, है ना। ये कई लोगों के दिमाग में पहले से घुसा हुआ है। तो अद्वैतवाद से बचना, सावधान रहना, अगर घुसा है आपके दिमाग में तो उसको निकालो, अगर नहीं घुसा है तो सावधान रहना कि घुसे नहीं, आप समझे ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, अद्वैत का समर्थन नहीं होता है, क्योंकि अणुआत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। क्यों? क्यों इतने जो है ना विशेषण भगवान ने जीवात्मा के बदलाए हैं, अचल है, सनातन है, स्थाणु है, नित्य है, सर्वगत है, शरीर के अंदर जो है शरीर नष्ट होता है लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं होता है ना। तो फिर मुक्ति के बाद कैसे भगवान में मिल जाएगा, है ना, गलत है। मुक्ति के बाद ये जीव जो है भगवान में नहीं मिलता है। क्या होता है मुक्ति के बाद, कौन बताएगा? अद्वैतवाद के अनुसार मुक्ति के बाद जो जीवात्मा है ये परमात्मा मिलीन हो जाता है ना। और ये सिद्धांत गलत है, ये इतनी देर से तो हम इसको बता रहे हैं कि गलत सिद्धांत है, है? उसी को जब मैंने प्रश्न किया तो उसी को निकाल दिया आपने अपने मुंह से, है ना, नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होए क्या कृष्णेर नितदास। तो मुक्ति के बाद क्या होता है जीवात्मा? भगवान के धाम में भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, लीन नहीं होता है, ठीक है ना। रामानुजाचार्य जो एक वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया है, अद्वैतवाद का खंडन किया है रामानुजाचार्य ने, और कई प्रकार की युक्तियों से अद्वैतवाद का खंडन करते हैं वैष्णव आचार्य। तो उन्होंने एक युक्ति दी रामानुजाचार्य ने, क्या कहा कि एक हरे रंग का तोता है, वो उड़ करके हरे रंग के पेड़ में बैठ गया। अब सामान्य आंखों को कैसा लगता है कि वो लीन हो गया पेड़ में, मतलब क्या हुआ, अब वो तोता नहीं रहा, वो उसमें समा गया, लीन हो गया, मतलब मिट गया, खत्म, है ना। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो क्या होगा, तोता बैठा हुआ है कि नहीं, और पेड़ में आनंद ले रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से हम कहते हैं भाई मुक्ति के बाद जीवात्मा भगवान में लीन हो गया, मुक्ति के बाद जीवात्मा परमात्मा लीन हो गया, लेकिन ये गलत है। मुक्ति के बाद जीवात्मा भगवान के धाम में जाकर के भगवान की संगति का आनंद प्राप्त करता है, ठीक है ना। और भगवान के साथ में जो है ना अनेक प्रकार के रसों में किसी न किसी एक रस से अपना संबंध जोड़ता है, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, कोई न कोई संबंध जो है ना भगवान के साथ में अपना जोड़ता है जीवात्मा, ठीक है ना। तो ये जीवात्मा भगवान नहीं बनता है, ठीक है ना। जैसे तोता पेड़ नहीं बन जाता है या पेड़ में मिल नहीं जाता है, हैं? पेड़ में वो बैठ करके मजा लेता है, उसी प्रकार से जीवात्मा जो है भगवान के धाम में जाकर के भगवान का संग प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी जो है ना तात्पर्य की ही एक एक शब्द को बहुत नाप नाप करके बताते हैं, हैं? प्रभुपाद जी ने यही कहा है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अणु आत्मा मतलब शरीर में जो जीवात्मा है ये बहुत छोटा है, अणु, समझे ना, बहुत अणु है, बहुत छोटा है जीवात्मा शरीर के अंदर, है कितना छोटा है, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उसमें लीन हो जाऊं, तो ठीक है एक कण बन सकते हैं आप। भगवान के शरीर से निकले हुए प्रकाश का एक कण आप बन सकते हैं अगर चाहें तो, मुक्ति के बाद कई प्रकार की मुक्तियां हैं। तो एक प्रकार की मुक्ति ये भी है कि आप एक कण बन सकते हैं उस ब्रह्म ज्योति में जाकर के। किंतु प्रभुपाद क्या कहते हैं, किंतु बुद्धिमान जीव ऐसा नहीं करता। क्या समझे, जो बुद्धिमान जीव है वो क्या नहीं करता, मुक्ति के बाद वो ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होता वो क्या करता है फिर। बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो वैकुंठ लोक में चार प्रकार की मुक्तियां हैं, चार प्रकार की मुक्तियां वैकुंठ लोक में है। वैकुंठ के बाहर ब्रह्म ज्योति में एक मुक्ति सायुज्य है कि आप ब्रह्म ज्योति में एक कण प्रकाश के कण बन जाएं, है कि नहीं। तो उसमें क्या है, उसमें कोई प्रेम थोड़ी है भगवान के साथ, कोई भगवान की सेवा भी नहीं है, कोई प्रेम भी नहीं है, तो कहां आपको रस प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो जो है ना, भक्ति का रस नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो वो जो ब्रह्मानंद है उसमें वो रस नहीं है भक्ति का है? तो जो बुद्धिमान जीव है वो क्या चाहता है, वैकुंठ लोक में जाना चाहता है। वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है भगवान की संगति करने के लिए। तो ब्रह्म ज्योति में भगवान की संगति थोड़ी मिलती है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है। अब देखो दूसरी पंक्ति में दूसरा शब्द है ना, नित्य सर्वगता। तो सर्वगता जो मायावादी है वो क्या कहते हैं, सर्वगता का मतलब क्या है कि भाई सब जगह व्याप्त है। सर्वगत का मतलब सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन ये जीवात्मा सर्वत्र व्याप्त कैसे होता है, जब शरीर में भी जो है ना ये कितना छोटा है, बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है। शरीर के अंदर भी जो है ना ये सर्वगत नहीं है, है? शरीर के कौन से स्थान में रहता है जीवात्मा, हृदय में रहता है। तो जब शरीर के अंदर भी जो ना सर्वगत नहीं है ये जीवात्मा, तो फिर सर्वगत कैसे होता है कि पूरी दुनिया में सब जगह एक जीवात्मा फैला हो। तो सर्वगत का मतलब जो है सर्वत्र व्याप्त नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। फिर सर्वगत का मतलब क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। जीवों की संख्या क्या है, असंख्य है, असंख्य जीव है। और हर जगह जीव जो है अपने कर्म के अनुसार जो है शरीर प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। तो सर्वगत का मतलब यही है कि ये जो जीव आत्मा है अपने कर्म के अनुसार किसी भी स्थान में जा सकता है, ठीक है ना। सर्वगत का मतलब ये है, सर्वत्र गत है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये जीव जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, वायु में रहते हैं, पृथ्वी के भीतर भी रहते हैं। जमीन खोदोगे तो जमीन के अंदर भी जीव निकलेंगे बहुत से, है ना। और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, है ना। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है, ठीक है ना। सूर्य में इतनी गर्मी है लेकिन वहां पर भी जीव है, तो ये समझना चाहिए। जैसे कि पानी में आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन कितने जीव पानी के अंदर रहते हैं और बहुत सुविधापूर्वक रहते हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य लोक में अगर आप नहीं जा सकते हैं, आप नहीं रह सकते हैं उस अग्नि के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जीव वहां नहीं रह सकता है ना। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम चर्चा करेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये जो पुस्तक है इसमें प्रभुपाद जी का एक पत्र है, और प्रभुपाद ने पत्र लिखा था हृदय रोग के एक विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो, ये हृदय रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर बिगेलो को पत्र लिखा प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, उनको पत्र में लिखते हैं, आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न ये है कि आत्मा कहाँ है और ये कहाँ से आती है, इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपके लिए बड़ा कठिन प्रश्न है ये कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है, लेकिन इसको समझने में जरा भी कठिनाई नहीं है। ये 1968 की बात है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है, तो उसके छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए श्रीला प्रभुपाद ने आज के वैज्ञानिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया। देखो वहां विद्यार्थियों के बीच में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया और क्या संकेत किया, एक मृत एवं जीवित शरीर में अंतर की खोज करने के उद्देश्य पर आधारित विभाग कहाँ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपकी इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसमें कई विभाग हैं ज्ञान के, शिक्षा के, लेकिन ऐसा विभाग कहाँ है जिसमें क्या पता लगे कि मृत